अनार्पित चिरात् करुणयादवतीर्ण कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिं श्रियं हरिपुरटसुन्दरद्युते कदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्वरतो वः शचिनन्दनः. शुड् स्पीक् इन् इङ्ग्लिश् आर् हिन्दी? You take a vote, stand up, that's it. Majority, whichever shows majority.
Hare Krishna, kitne bhakta hindi mein sunna chahte hain, haath upar kijiye. Kitne English mein sunna chahte hain? 50-50. So, sabhi hindi mein.
Hindi mein bolenge, theek hai. Anarpita charim chirat ka matlab hai, bahut hazaron hazaron सालों में जो भगवान कृष्ण की राग भक्ति नहीं दिया गया है जनसाधारण में, क्योंकि जनसाधारण आसानी से उसको समझ नहीं सकता है व्रज भक्ति को. करुणयाद अवतीर्ण कलौ, अपने हृदय में करुणा भरी हृदय को लेकर भगवान श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस दुनिया में अवतरित होते हैं. समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम, और खास करके इतना ही नहीं कि वो दास्य भक्ति साख्य भक्ति वात्सल्य भक्ति को सिखाते हैं, लेकिन वो उन्नत उज्ज्वल रस जो है जो माधुरीय भक्ति है उसको सिखाते हैं, सबको प्रदान करते हैं. समर्पयितुम स्वभक्तिम श्रियम, कोई पूछ सकता है कि अरे वो खुद ही कृष्ण है तो वो भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति तो कृष्ण के लिए की जाती है, अगर वो कृष्ण है तो वो कैसे भक्ति करते हैं? इसलिए बोला गया है कि स्वभक्तिम श्रियम, अपने ही भक्ति करते हैं भगवान, अपने ही नाम लेते हैं और दुनिया को सिखाते हैं कैसे लेने का. जैसे कभी कभी कोई टीचर है, डॉक्टरेट किया है उन्होंने, PhD किया है, लेकिन उनको LKG के बच्चों को सिखाने के लिए भेजा जाता है BMS में, हैं अगर आ जाते हैं तो LKG के बच्चों को क्या सिखाएगी? ABCD सिखाएगी उनको. इसका मतलब नहीं कि वो सिर्फ ABCD जानती है, वो तो PhD की है उन्होंने. इस तरह भगवान भी अपने आप को भक्त के रूप में रूप धारण करके एक शुद्ध भक्त का व्यवहार कैसे होता है उस व्यवहार को सिखाने के लिए भगवान इस दुनिया में महाप्रभु के रूप में आते हैं. हरि पुरट सुंदर अद्युते कदम बसंदीपितः सदा हृदय कंदरे स्वरतो वशचिनंदनः. ये बताते हैं कि भगवान हरि का श्याम वर्ण होता है, लेकिन ये हरि जो है ये गौर हरि है, क्योंकि इनका कांति सुनहरा है. श्रीमती राधा रानी की राधा द्युति सुवलितम, राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, ऐसे बोला गया है. राधा के कान शरीर की कांति को लेकर, राधा के भाव को लेकर कृष्ण इस दुनिया में श्याम वर्ण में आने के बदले गौर वर्ण में आते हैं. ऐसे गौर हरि भगवान एक सिंह के बराबर है, क्योंकि कभी कभी एक सिंह एक हाथी के पीछे करता है तो हाथी इस सिंह से दूर भागता है और किसी गुफा के अंदर घुस जाता है, लेकिन ये सिंह वो गुफा के अंदर जाकर हाथी के गर्दन के ऊपर प्रहार करके उसको खींच कर बाहर लाकर मार डालता है उसको. इस तरह मेरे हृदय में अंधकार रूपी अज्ञानता और अनर्थ जो एक काला हाथी के बराबर है, उसको भगवान चैतन्य महाप्रभु जो एक सिंह के बराबर हैं वो मेरे हृदय के अंदर प्रवेश करके उस अनर्थ को काट कर बाहर निकाले, ऐसे बताते हैं. हरिस्वरट सुंदर अद्युति कदम बसंदीपितः सदा हृदय कंदरे स्वरतौ वः शचिनंदनः. वो सचिनंदन भगवान गौर हरि हरे हृदय के सब अनर्थों को निकाले, और शुद्ध भक्ति कृष्ण प्रेम खास करके माधुरी भक्ति को समझने की शक्ति प्रदान करे. इस तरह ये प्रार्थना है. आजानुलंबित भुजौ कनकावधातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंबरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, इनके लंबे बाहु हैं, लंबे हाथ हैं, आजानु लंबित भुजौ कनकावधातौ, और ये कनक के दंड के बराबर है उनके हाथ, क्योंकि ये सुनहरा रंग का है। और संकीर्तन एक पितरऊ, पितर पितर का मतलब एक है, पितरऊ का मतलब है दो, गौर निताई दोनों दोनों संकीर्तन मिशन के पिताजी हैं। कमला यताक्ष, उनके नयन कमल के पंखड़ियों के बराबर है। विश्वंभर, सारे दुनिया को पोषण देते हैं संकीर्तन मूवमेंट के द्वारा, क्योंकि इस दुनिया में भव महा दावाग्नि में तड़पने वाले जीव जो होते हैं इधर उधर भटकते हैं विषय भोग के लिए और जलते हैं, जलकर मर रहे हैं, ऐसे जीवों को उनके ऊपर ये संकीर्तन का एक तरह का वर्षा बरसा कर उनको आनंद का अनुभव प्रदान कर रहे हैं, इसलिए वो सारे जगत को पोषण देने वाले हैं। इसलिए विश्वंभरो द्विजवरो, और वो सब द्विजों में श्रेष्ठ हैं दोनों। युग धर्म पालो, और युग धर्म को पालन भी करते हैं, प्रदान भी करते हैं सब जीवों को। वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो, ये करुणा के अवतार हैं, जैसे पिछले गीत में हमने गाया ये सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंड। कितने कितने अवतार आकर गए हैं, बहुत कठिन जटिल मार्गों को सिखा कर गए हैं, हमको लागू करना कठिन है। जैसे नरनारायण ऋषि आए, कैसे कठोर तपस्या करना चाहिए हिमालय में रहकर, वो सिखा कर चले गए। अभी हम लोग उनको मालूम है लेकिन हम कर नहीं पाएंगे उन्होंने जो सिखाया। कपिल देव आए, देवहूति पुत्र कपिल, उन्होंने सिखाया माता देवहूति को सांख्य योग के बारे में। सांख्य योग सुनते सुनते लोग सो जाएंगे, ये 24 तत्वों के बारे में वर्णन है सांख्य योग में। इस तरह आप सुनेंगे अनेक अवतार आए हैं, अनेक विविध मार्गों को उन्होंने सिखाया है। तो ये सब सीखने के बाद भी जीवन में लागू करना कठिन है, इसलिए बोलते हैं सब अवतार। ये अवतार जब बोलते हैं, कभी कभी भगवान खुद ही आते हैं अवतार के रूप में, कभी कभी अपने भक्तों को शक्तिपात करके अवतार के रूप में भेजते हैं। जैसे चतुष कुमार, उनके अंदर भगवान ने शक्तिपात किया, वो एक शक्तिआवेश अवतार हैं। एक कुमार आते हैं ज्ञान सिखाने के लिए, एक आते हैं योग सिखाने के लिए, एक आते हैं सांख्य सिखाने के लिए। इस तरह अलग अलग कुमार अलग अलग मार्गों को सिखाते हैं, लेकिन ये सब हालांकि वो भी एक तरह के अवतार हैं, लेकिन वो मार्ग बहुत कठिन मार्ग है। लेकिन ये जो चैतन्य महाप्रभु आते हैं ये सिखाते हैं, ये मार्ग बहुत सुलभ मार्ग है, बताते हैं केवल आनंद कंद। बोलते हैं कि एक बच्चा भी नाचता है कीर्तन में, और कोई बूढ़े हो, कोई बच्चा हो, कोई जवान हो, कोई भी हो, सब लोग इस मार्ग को बहुत सरल तरीके से आसानी से वो ले पाएंगे, क्योंकि इसमें भगवान के लिए जो करना होता है वो बहुत सरल है, सिर्फ करने के लिए मन चाहिए बस। भगवान का नाम लेना, भगवान के कीर्तन करना, भगवान को स्मरण करना बस। तो केवल आनंद कांड बताते हैं। और ये एक बार परम पूज्य कदम कानन महाराज बता रहे थे, एक रोटनबर्ग नाम का एक शहर है, कहे तो फॉरेन में, उस रोटनबर्ग शहर में एक इस्कान का मंदिर है। तो वो लोग हरिनाम में गए, तो हरिनाम जब वापस लौटा गए 8 लोग, वापस लौटे 10 लोग, क्योंकि 2 लोग साथ में आ गए हमारे भक्तों के साथ, वो उनको बहुत अच्छा लगा। वो लोग पहली बार हरिनाम संकीर्तन को देख कर ही वो नाचने लगे। वो तो नाचते नाचते मंदिर में आ पहुँचे, बोला कि आप लोग कैसे ये मंदिर में ज्वाइन किया है, इसका प्रोसीजर क्या है। वो लोग बोले प्रोसीजर कुछ नहीं है, इधर ही ठहर जाओ बस। तो वो दोनों ठहर गए। तो पहले ही दिन शाम को वो लोग सुबह पहुँचे मंदिर में, और शाम को वो लोगों को किताब वितरण के लिए भेजा गया। तो नए आज ही आया है, शाम को उसको शेव करके भेज दिया बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो उसको एक बैग दिया गया है, एक हाथ में बैग, दूसरे है, दूसरे इसमें उनके पास मंदिर का पैम्पलेट था, उनके पास दो चार सेब थे जो प्रसाद था, महाप्रसाद था, जे सेब उनको उनके पास था। तो जब मार्केट में गए, किसी को देखा, किताब दिखाया, ज़्यादा लोगों ने खरीदा नहीं, लेकिन जो खरीदा एक दो लोग, उनको अपने सेब को निकाल कर काट कर उनको दिया। देखिए नया नया भक्त है, आज ही आया है मंदिर में, लेकिन उसको लगता है कि हमें देना चाहिए कुछ। किताब खरीदने वाले को उन्होंने किताब भी दिया, सेब को काट कर दिया। तो कदम खान महाराज बता रहे थे, देखो रॉटनबर्ग सिटी जो है, सब लोग रॉटिंग है, एवरीबडी वॉज रॉटिंग इन दैट रॉटनबर्ग सिटी, क्योंकि माया का नगरी है वो। ऐसे माया नगरी में आज जो भक्ति में जुड़ा है, वो भी भक्त प्रचारक बनकर भगवान के प्रसाद को वितरण कर सकता है, ये भक्ति मार्ग है। ऐसे बताया, समझा ना आपने, कितना सरल मार्ग है। ऐसा नहीं कि आपको अगर संस्कृत व्याकरण सीखना हो, आपको 12 साल लग जाएगा कम से कम, उसके बाद दो शब्द बोल पाएंगे आप संस्कृत में। लेकिन भक्ति सीखने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं, एक ही दिन में सीख भी सकते हैं, वितरण भी कर सकते हैं उसको। इसलिए इसको केवल आनंद कंड ऐसे बताते हैं। और बोलते हैं कि पशु पक्षी जूरे पाषाण बिदरे, ऐसे बताते हैं कि ये भक्ति जो महाप्रभु दे रहे थे, उसको रूप सनातन ने देखा रामकेली में। देखिए रूप सनातन सब शास्त्रों में पढ़े लिखे थे, बड़े पांडित्य प्राप्त किए थे, और उनको मालूम था कि ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग में सब जीव फंस रहे हैं। कर्म मार्ग के लोग जो हैं, वो विविध तरह के पूजा इत्यादि करके वो इस दुनिया में भोग विलास करना चाहते हैं, और ज्ञान मार्ग में फंसे लोग क्या करते हैं, वो मुक्ति पाकर शांति प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान के सुंदर स्वरूप को भूलना चाहते हैं वो। तो दोनों तरीके के लोग फंस रहे हैं, वन इज एस्केपिस्ट, वन इज एक्सप्लॉयटिस्ट, एक्सप्लॉयटर एंड एस्केपिस्ट। एस्केप का मतलब है मायावादी लोग एस्केप करते हैं भगवान की सेवा से, अन्य कर्मी लोग एक्सप्लॉयट करते हैं भौतिक प्रकृति को। तो रूप सनातन ने देखा कि इस दुनिया में ज़्यादा लोग, भारत में भी हम देख रहे हैं कि जो गीता भागवत पढ़ने वाले अनेक लोग क्या दे रहे हैं लोगों को, लोगों को धोखा दे रहे हैं, भगवान को छोड़कर बाकी सब बात बता रहे हैं लोगों को। तो उन्होंने देखा रामकेली में भगवान चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ ऊपर करके सब लोगों को कीर्तन में जोड़ रहे थे, कृष्णा 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 कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम कृष्णा केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव हे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे करता। रूप सनातन ने देखा कि लोगों की आंखों में आंसू भर रहा था, रोम कड़े हो रहा था, लोग लोट पड़ रहे थे जमीन में, और नए नए लोग आकर हाथ ऊपर करके कीर्तन करते हुए जुड़कर, जो लोग बड़े पापी थे, जो लोग क्रूर थे, जो लोगों में लेश मात्र भी धर्म का चिन्ह नहीं दिख रहा था, ऐसे भी लोग आकर इस कीर्तन में जुड़कर सब पाप कर्म के बंधन को नष्ट करके भक्ति को जागृत कर रहे थे। इसको देखकर रूप स्वामी उनके रूप सनातनी के आंखों में आंसू बहने लगा। तभी उन्होंने बोला कि नमो महावदान्याय, उस समय बोला उन्होंने। तो महाप्रभु ने पूछा कि महावदान्याय बोल रहे हो, मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास क्या है देने के लिए? इसलिए उन्होंने बोला कि आप पैसा नहीं दे रहे हैं, ऐसा दान नहीं दे रहे हैं, आप क्या दान दे रहे हैं? कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम को आप बहुत मुफ्त में सब तरह के जीवों को देने के लिए आप तैयार हैं, जो भी आकर भक्ति में जुड़ने के लिए तैयार हैं उनको दे रहे हो आप, और आप इस तरह का भक्ति का वितरण कर रहे हो बहुत प्रचुर मात्रा में, इसलिए आप जरूर कृष्ण की होंगे आप, क्योंकि इस तरह का काम कोई नहीं कर सकता कृष्ण को छोड़कर, क्योंकि व्रज प्रेम को प्रदान करने के लिए भगवान कृष्ण बताते हैं मुझे ही खुद ही आना पड़ेगा, कोई और नहीं प्रदान कर सकते, नारायण भी प्रदान नहीं कर सकते हैं व्रज प्रेम को ऐसे। और इधर चैत्र महाप्रभु व्रज प्रेम प्रदान कर रहे हैं सबको, क्योंकि इस तरह की कीर्तन में जुड़ने से तुरंत हृदय में वृंदावन की भक्तों की भावना जागृत हो जाता है, राधा कृष्ण के ऊपर प्रेम जागृत होता है, युगल प्रेम है। और इस तरह दुनिया के सब तरह के भोग विलास एकदम तुच्छ दिखता है, जैसे एक व्यक्ति कांच के टुकड़ों को फेंक देता है, इस तरह संसार के सुख भोग इत्यादि एकदम तुच्छ बन जाता है महाप्रभु के भक्तों को। कैवल्यम नरकायते दश पूराकाश पुष्पायते दूरदान्तेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्ट्रायते विश्वं पूर्ण सुखायते विधि महेन्द्रादिश्च कीटायते यत् कारुण्य कटाक्षवे भवतां तं गौरमे वस्तुमः। इस श्लोक में बताया गया है कि जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान गौरंग महाप्रभु की कारुण्य कटाक्ष गिर गया, किसी के ऊपर अगर हम भगवान के सामने आकर दर्शन करते हैं, भगवान का कारुण्य कटाक्ष का मतलब है करुणा भरी आंखें, उनका दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गया तो क्या क्या हमें होगा, इस श्लोक में बताया गया है। बताया गया कि कैवल्यम नरक आयते, वो लोग मोक्ष प्राप्त का नहीं करना चाहते हैं, प्राप्त करके ब्रह्म में लीन होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्म में सेवा नहीं है उधर। कैवल्यम नरक आयते, जिस स्थान में सेवा नहीं है वो नरक है वो। इसलिए गोस्वामियों को बताया गया है कि कैवल्य निस्तारक हो, कैवल्य में ब्रह्म लीन होने से बचाने वाले लोग कौन है? गोस्वामी लोग हैं, और बचाकर उनको भगवत धाम में वैकुंठ में भेजते हैं जिधर सेवा प्रचुर मात्रा में है उधर। त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, इस तरह बता रहे हैं कि स्वर्गवास हो, अपवर्ग हो, ब्रह्म में जाना हो, ये सब ये गौरव भक्त जो होते हैं उनको एकदम तुच्छ मानते हैं उसको। ब्रह्मा की पदवी, इंद्र की पदवी भी उसको भी वो कीड़ा मानते हैं, वो कीड़ा के बराबर मानते हैं। और बताते हैं कि उनको इस दुनिया में, हालांकि कृष्ण ने बोला कि ये दुनिया दुखालय है और अशाश्वत है, लेकिन भगवान गौरंग महाप्रभु के भक्त इस दुनिया को क्या मानते हैं? विश्वम पूर्ण सुखायते। क्यों ऐसा बताया गया है, ऐसा मानते हैं क्योंकि इस दुनिया के किसी भी पदार्थ को वो कृष्ण से बिछुड़ कर नहीं देखते, वो सब पदार्थों को लेकर कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनको दिख रहा है कि ये दुनिया ही वैकुंठ बन गया उनको। इस तरह प्रभुपाद जी जब उधर गए थे अमेरिका में, हिप्पियों के बीच में रहे, हिप्पियों ने बोला कि स्वामी प्रभुपाद आप तो परमहंस महाभागवत हो, हमारे बीच में ही इधर आकर बावरी में रहना पड़ता है आपको, ये तो सबसे खराब स्थान है जिधर लोग शराब पीते हैं, नशा पान करते हैं, सब करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि क्या बोला आप लोगों ने, ये तो वैकुंठ है, बोला उन्होंने। क्यों वैकुंठ है? जितना भी गंदा स्थान हो अगर भगवान का नाम लोग लेते हैं उधर वो वैकुंठ बन जाता है, ऐसे प्रभुपाद ने देखा उसको। प्रभुपाद ने हिप्पियों के बीच में बौरी को भी वैकुंठ के रूप में देखा, इसलिए विश्वम पूर्ण सुख आए थे। ये सर बताते हैं कि ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के कारण कटाक्ष जिसको प्राप्त हो गया वो बड़ा भाग्यशाली है। तो इस तरह रूप सनातन बता रहे हैं कि आप जिस तरीके से लोगों के हृदय में प्रेम को जागृत कर रहे हो, इस तरह का तरीका आज तक किसी ने सिखाया नहीं इस दुनिया में। लोगों को प्रसाद परोसना, लोगों को कीर्तन में जोड़ना और कीर्तन में उनको नचाना और भगवान की सब भक्ति के व्रतों को अपनाना, भगवान के सामने सर झुकना, भगवान की आरती करना, भगवान की प्रदक्षिणा करना और स्वाभाविक रूप से भगवान की प्रेम करना, भगवान को अपना बनाना, भगवान के साथ ममता रखना, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, इस तरह के भावना को जागृत करना, यह भक्ति मार्ग है। तो ये सिखा रहे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। इसको देखकर रूप सनातन ने सोचा कि हम भी बड़े पंडित हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस तरह हजारों लाखों लोगों को भक्ति में जागृत करके प्रेमाश्रु उनके आंखों से बहाना हमारे हाथ की काम नहीं है, वो सिर्फ भगवान कृष्ण कर सकते हैं। इस तरह बोलकर उनकी प्रशंसा किया उन्होंने। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले कि आप कैसे कह सकते हो कि मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण तो श्याम सुंदर है। इसलिए उन्होंने बोला कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। वो बोले कि हमें मालूम है कि आप कृष्ण हो, लेकिन आप कृष्ण के वर्ण लेकर नहीं आए हो, लेकिन आप सुनहरा रंग के साथ आए हो, जो श्रीमती राधा रानी की रंग है उसको लेकर। तो इस तरह महाभारत में भी एक श्लोक है जो बता रहा है कि भगवान जब आते हैं कलयुग में वो एक सुनहरा शरीर धारण करके आते हैं, चंदन पहनते हैं अपने शरीर में, और इस तरह वो ज्ञानी योगी लोगों को भी वो शांत करा देते हैं, निष्ठा शांति परायण ऐसे बताया गया है। तो इस तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु की अवतार बहुत अद्भुत अवतार है, दुर्लभ अवतार है। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद खंड, क्योंकि इस जमाने में लोग मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद भी जानवर जैसे लोग द्विपाद पशु के समान जी रहे हैं लोग, और लोगों को साधारणतः धर्म के ऊपर रुचि नहीं है, धर्म से दूर भाग रहे हैं लोग, धर्म से डरते हैं, तपस्या करने के लिए डरते हैं। लेकिन ऐसे जमाने में आकर भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर ऐसे एक सरल मार्ग सिखाते हैं। एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत में जिसमें बताया गया कि पात्र अपात्र ना देखी, ऐसा बताया गया है, जिसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति के अंदर पात्रता भी ना हो, वो पात्रता प्रदान करके उनको भक्ति देते हैं। जैसे अगर आपको भिक्षा मांगना हो तो भिक्षा पात्र की जरूरत है। अगर कोई भिखारी इतना भिकमंगा होगा, इतना भिखारी बड़ा भिखारी होगा कि उसके पास भिक्षा पात्र ही नहीं है, आप उसको बोलो पात्र लेके आओ, मेरे पास कुछ प्रसाद है, भोजन है, दूंगा तुमको, वो बोलता है कि मेरा कोला हाथ है, कुछ नहीं है मेरे पास। तो उसको पात्र देकर उसके अंदर भिक्षा डालना, ये काम करते हैं चैतन्य महाप्रभु ऐसे। इसलिए वो परम करुणा ऐसे नाम से पुकारे जाते हैं, अति कृपालु हैं। तो आज एक विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले थे, क्योंकि आज चैतन्य महाप्रभु की जयंती है, जन्मदिवस है। इसमें हम बहुत कुछ विषयों के बारे में हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। एक चीज़ है जिसके बारे में आज नहीं बोलूँगा, मैं आने वाले रविवार को बोलेंगे दोपहर को 2 से 4 हिंदी क्लास में, 6 कारण जिससे चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए उसके बारे में हम हिंदी में बोलेंगे, क्यों कारण से भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। उसके 6 कारण हैं, 3 अंदरूनी कारण है और 3 बाह्य कारण है, हम उस समय चर्चा करेंगे। उसके बारे में पढ़ना समझना कोई कर सकता है, और चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को हम पढ़ सकते हैं, जिससे वो सिखाते हैं कि भक्त का आदर्श सदाचार क्या होता है। अपने आचार्य करी सबायु सिखारे, ऐसे बताते हैं कि मेरे आचरण के द्वारा मैं सब जीवों को मैं सिखाऊंगा, ऐसे बताते हैं। तो इसलिए भगवान के आचरण के बारे में आज पढ़ सकते हैं, विविध लीलाएं उन्होंने जो की है, उन लीलाओं के द्वारा क्या क्या सिखाया महाप्रभु ने वो हम पढ़ सकते हैं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के समय नवद्वीप का हाल कितना बुरा हाल था, और उस समय कैसे भक्ति को छोड़कर सब कुछ बाकी सब चीज करते थे लोग, और उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु कैसे अवतरित होते हैं भक्तों के बीच में, कैसे उन्होंने लीला की है भक्तों के बीच में, उसके बारे में पढ़ सकते हैं हम। पढ़ सकते हैं कि भगवान कैसे एक तार्किक शिरोमणि थे पहले तर्क वितर्क करने में, और ऐसे तर्क वितर्क करने वाले एक एक तरह का वितंडावाद करने वाले पंडित का रूप अपना आकर उसके बाद अचानक एक दिन भगवान एक शुद्ध भक्त का भूमिका निभाया। उसके बाद ये दुनिया को सिखाना चाहा भगवान, जितने भी तुम बड़े पंडित बनो, जितने लोगों पे तुम हरा हो उससे कुछ लाभ नहीं, लेकिन भक्ति ही असली लाभ है वो दिखाते हैं। और ऐसे भक्ति भी भगवान दिखाना चाहते हैं कि भक्तों की कृपा से ही प्राप्त होता है, इस तरह भक्तों की सेवा करके उन्होंने भक्ति हासिल की, वो हम पढ़ सकते हैं इसके उनके बारे में। और कैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी की शरण लेकर, ईश्वरपुरी जब आए थे नवद्वीप में 7 महीना ठहरे, ये चैतन्य भागवत में बताया गया है 7 मंथ्स, और हर दिन वो क्लास देते थे गदाधर पंडित के घर में, और निवाय पंडित जाकर अटेंड करते थे वो क्लास में। और ये 7 महीने होने के बाद जब निकलने वाले थे तभी निवाय पंडित ने उनको स्वागत किया था अपने घर में। ईश्वरपुरी इतने महान भक्त थे, आज सुबह हम सुन रहे थे, अगर ऐसे महान भक्त की संग करके कौन शुद्ध भक्त नहीं बनेगा, तो भगवान खुद ही चैतन्य महाप्रभु भगवान होने के बावजूद भी उन्होंने संग किया ईश्वरपुरी के साथ। इस तरह कृष्ण लीला का श्रवण करके उन्होंने भक्ति को जागृत किया इस तरह। हालांकि उनके हृदय में ऑलरेडी महाभाव था, महाभाव लेकर आए हैं ऑलरेडी, अंदर है महाभाव, लेकिन प्रकट नहीं किया, ईश्वरपुरी के साथ संग करके उसके बाद उन्होंने प्रकट किया महाभाव ऐसे। और इस तरह ईश्वरपुरी से दीक्षा लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमें भी दीक्षा लेना चाहिए। कुछ कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि प्रभु जी दीक्षा की ज़रूरत है क्या, क्योंकि दीक्षा लेने से हम बंधे जाते हैं गुरु के आदेश से, थोड़ा फ्रीडम चला जाता है, लेकिन महा भगवान खुद ही दीक्षा लेकर दिखाते हैं कि ये गुरु के आधीनता में रहना चाहिए शिष्य को इस तरह, तो भगवान से हम सीख सकते हैं। और इस तरह भगवान अपने माता सची माता के साथ कैसे पेश आते हैं, संन्यास लेने के बावजूद भी, यह ब्रह्मचारियों के लिए पढ़ने के लिए लायक सेक्शन है कि हालांकि वो संन्यास लिया उन्होंने विरक्त भावना से, लेकिन माता के ऊपर कितना प्रेम दिखाया वो हम पढ़ सकते हैं। और कैसे ऐसा बताया गया कि युक्तिपूर्ण प्रचार प्रेमपूर्ण व्यवहार, ये दोनों सिखाते हैं चैतन्य महाप्रभु। युक्तिपूर्ण प्रचार का मतलब है युक्ति एक तलवार है एक साधु के लिए, क्योंकि साधु का जिह्वा जो है वो एक तलवार से तुलना किया है, क्योंकि वो भवबंधन को काटता है अपने युक्तियों के द्वारा, युक्तिपूर्ण प्रचार। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती और स्वरूप भट्टाचार्य के मायावाद को काटा उन्होंने और भक्त बनाया उनको इस तरह, और बौद्ध लोगों के गलत धारणाओं को काटा उन्होंने इस तरह। दक्षिण भारत में माधव संप्रदाय के लोगों को जब मिला उन्होंने, उनके भी तत्ववादी थे वो लोग, गलत धारणाओं को उन्होंने काटा उन्होंने इस तरह युक्तिपूर्ण प्रचार किया, लेकिन साथ साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार भी था चैतन्य महाप्रभु के, जिसके द्वारा अपने सिद्धांत को पहुंचा पाए दूसरे लोगों के पास ऐसे। इस तरह महाप्रभु के चरित्र को पढ़कर सुनकर हम सही ढंग से वैष्णव सदाचार को हम सीख सकते हैं। और ये भी बात हम जब भगवान चैतन्य महाप्रभु की छोटे जब बच्चे थे उन लीलाओं को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि श्याम सुंदर भगवान जो हैं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल के रूप में लीला करते हैं उनकी लीलाओं में, और चैतन्य महाप्रभु जो गौरहरि के रूप में छोटे नन्हे मुन्ने बालक के रूप में नवद्वीप में लीला करते हैं, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है हम समझ सकते हैं। जो सोचेगा कि नवद्वीप वृंदावन से अलग है वो बड़ा पापी माना जाता है। इसका मतलब है नवद्वीप और वृंदावन दोनों एक ही धाम है, लेकिन एक फर्क है दोनों धामों में। वृंदावन धाम माधुर्य धाम है और नवद्वीप धाम औदर्य धाम है। ये माधुर्य धाम का मतलब है राधा कृष्ण युगल की प्रेम प्राप्त होता है हमें वृंदावन धाम में, और नवद्वीप धाम में वो प्रेम भी प्राप्त होता है और प्रेम करुणा के साथ दिया जाता है आपको, इसलिए औदर्य धाम है वो। वृंदावन में जाएंगे आपको थोड़ा माधुर्य प्रेम मिलना थोड़ा मुश्किल चलेगा हमको, नवद्वीप में जाएंगे आपको माधुर्य प्रेम भी मिल जाएगा, साथ साथ गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के करुणा भावना को देखकर हमें आंसू बहेंगे हम आंखों से ऐसे है, इसलिए औदर्य धाम बताया गया है ऐसे। इस तरह ये औदर्य धाम में नवद्वीप में भगवान गौरहरि जो लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ छोटे नन्हे मुन्ने बालक के रूप में, उसके बारे में हम लीलाओं को पढ़ सकते हैं, पढ़कर हम देख सकते हैं कि कैसे। एक दिन एक छोटा लीला बताएंगे, सची माता जो है उन्होंने उन्होंने देखा कि सची माता ही नहीं जगन्नाथ मिश्र और सची माता दोनों ने सुना कुछ नूपुर का आवाज़ सुना उन्होंने। ऐसे जब छोटे गौरहरि भगवान ऐसे रेंग रहे थे जमीन में, लेकिन उनके पदकमलों में उन्होंने कुछ नूपुर पाना ही नहीं था, फिर भी नूपुर का आवाज आ रहा था जब वो ऐसे गोल गोल घूम रहे थे जमीन में ऐसे। तो जगन्नाथ मिश्र ने बोला सची माता को, शायद हो सकता है कि ये हमारे जो शालिग्राम शिला है बालक गोपाल वो ही घूम रहे हो हमारे घर में, नहीं तो आवाज़ किधर से आएगा। इधर उधर सब कमरे में जाकर देखा कोई नहीं थे, सिर्फ उनका बच्चा ही घूम रहा था ऐसे। इस तरह के अद्भुत लीलाएँ किया उन्होंने। कभी कभी अचानक सची माता सुनती थी, ऐसा उनको लगा कि जोर से संकीर्तन चल रहा है अगले कमरे में चल रहा है, तो अगले कमरे में जाकर देखती थी तो ऐसे आवाज सुना उन्होंने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा सब लोग बोलिए कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इनको दिखा दिया दूसरे कमरे में कीर्तन ही नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक उन्होंने हजारों लक्ष्मियों को देखा उन्होंने। तो लक्ष्मी जो कमल के ऊपर खड़ी थी वो प्रस्थान हो गई, अचानक उन्होंने देवी देवताओं को देखा उन्होंने, और वो भी लोग प्रवेश करते थे और अचानक गायब हो जाते थे ऐसे। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु जिधर भी थे उनके इर्द गिर्द में हमेशा कीर्तन चलता था हमेशा, क्योंकि वो संकीर्तन को फैलाने वाले युगावतार हैं, इसलिए कहीं भी होते हैं उधर कीर्तन होता है। इस तरह जान बूझ कर ये छोटा बच्चा रोता था गौरहरि हाथ पैर हिलाते हुए, अब सब स्त्रियां सोचती थी इनको कैसे शांत किया जाए। तो अचानक एक 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 माता ने बोला उनके कान में बोला हरी 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 बोला, तो तुरंत वो शांत हो गए। तभी उनको टेक्निक मालूम हो गया उनको, जब भी बच्चा रोएगा क्या बोलने का, हरी हरी बोलने का। तो बाकी सबको बता दिया उन्होंने, इसलिए जब भी वो रोते थे वो सब बोलते थे। अगर भगवान देखते थे कि अगर सबको हरिनाम करवाना है सबके द्वारा, तो भगवान का जानबूझ कर रोते थे ऐसे, सबके द्वारा करवाते थे। इस तरह भगवान की बाल्य लीलाओं को पढ़ना चाहिए, पढ़ने से हमें पता चलता है कि भगवान कैसे संकीर्तन मिशन बचपन से शुरू कर दिया उन्होंने हरिनाम को फैलना, इतना तक कि उन आज के दिन जो है गौर पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा के दिन शाम के समय बड़े पूर्णिमा आता है, इस दिन जब भगवान अवतरित होते हैं उस समय अनेक मायावादी लोग भी हैं, बाकी योगी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, ये भी लोग जाकर गंगा में जब नहाते हैं, जब ग्रहण के समय जब नहाते हैं तभी वो भगवान के नाम लेते थे, पुंडरीकाक्ष कोई बोलता था, दूसरा बोलता था गोविंदा कोई बोलता था, कोई केशव बोलता था, कोई माधव बोलता था। उस ग्रहण के समय छोड़कर ये लोग कभी नाम नहीं लेते थे, इसलिए भगवान ने उस दिन अवतरित हुआ भगवान ने, क्योंकि ऐसे लोग जो जिस शुष्क वैरागी हैं वो भी लोग नाम लेते थे, नाम ले रहे थे उनके अवतरण के समय, ये पता चलता है हमें। तो इस तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाओं को पढ़ने से, पढ़ते समय ये याद रखना चाहिए हमें कि ये साक्षात कृष्ण हैं। कैसे वो अपने माता पिता को आनंद दे रहे हैं, और नवद्वीप वासियों को आनंद दे रहे हैं, अपने मित्रों को, बाकी लोगों को, जिस तरह वृंदावन में कृष्ण ने आनंद दिया अपने भक्तों को, ऐसे इस तरह। उसके बाद जब उनके बाल्य लीला होता है, पौगंड लीला होता है, कैशोर लीला होता है, जिसमें वो तर्क वितर्क करते हैं अपने मित्रों के साथ, उसमें भी बड़ा आनंद है पढ़ने के लिए, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों के साथ खेलने में, कूदने में, उनको मजाक उड़ाने में आनंद है उनको। जैसे गदाधर पंडित को देखते थे भगवान, गदाधर पंडित को अच्छी तरह मालूम था कि ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जब ऐसे सुंदर बालक थे, अपने विद्यार्थियों के साथ वो जाते थे नवद्वीप में, तो जैसे बताया गया है चैतन्य भागवत में, उनका सुनहरा रंग है शरीर, और जनेऊ पहने हैं, घुंघराले बाल हैं, उनके मुख जो है एक चंद्रमा के बराबर है, कमल के पंखड़ियों के बराबर आंखें हैं, और अपने हाथ में किताबों को लेकर, एक हाथ में किताब दूसरे हाथ को ऐसे हिलाते हुए चलते थे, और आसपास में अनेक विद्यार्थी भी जाते थे उनके साथ। तो नंदनदास ठाकुर बोलते हैं कि मानो दिख रहा है बीच में चंद्रमा है और आसपास में तारे हैं। तो बाद में उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये तो उपमा ठीक नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जो है उसमें थोड़ा काला दागा है, इसको तुलना नहीं किया जा सकता है। और क्या तुलना किया जा सकता है, ऐसे उन्होंने सोचा। उन्होंने बोला कि एक ही उदाहरण मुझे मन में आता है, बोला उन्होंने कि जब कृष्ण वृंदावन में यमुना के तट में बैठकर अपने मित्रों के साथ, सखाओं के साथ वो वन भोग ले रहे हैं, खा रहे हैं वन में, तो वो दृश्य के साथ उन्होंने तुलना किया चैतन्य महाप्रभु को। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु वैष्णवों को, वैष्णवों के साथ मिलते थे कभी कभी, अलग अलग वैष्णवों के साथ अलग अलग रिश्ता था उनका। जब गदाधर पंडित आते थे तो गदाधर पंडित बहुत कोमल भावना के थे, तो महाप्रभु उनको रोकते थे सड़क में, उनको बोलते थे कि बताओ मुक्ति का परिभाषा बताओ, इस तरह कुछ प्रश्न पूछते थे, और वो जो जवाब देते थे गदाधर पंडित उसके एकदम विरुद्ध बोलते थे, और बोलते थे कि मेरे जो बात है इसको नकारो अभी, समझाओ मुझे। तो गदाधर पंडित थोड़ा प्रयत्न करते थे, लेकिन हर एक नवद्वीपवासी का अनुभव था कि कोई भी उनको पराजित नहीं कर सकता था। तो इस तरह गदाधर पंडित कभी भी देखते थे दूर से भाग जाते थे, वो निकट आते नहीं थे। इस तरह बाकी भक्त भी, जैसे मुकुंद नाम के एक भक्त है, बहुत सुंदर गायक है, बाद में बहुत निकट पार्षद बनते हैं चैतन्य महाप्रभु के, वो भी इनको देखकर दूर से मुड़कर भागता था वो। तो चैतन्य महाप्रभु अपने मित्रों को पूछते थे, स्टूडेंट्स को पूछते थे, क्यों इस तरह भाग रहा मुकुंद मुझे देखकर, क्यों डरता है मेरे से? तो वो लोग बोलते थे कि हो सकता है घर में कुछ रख दिया हो, भूल गया हो, इसलिए वो उस दिशा में जा रहा है। तो महाप्रभु बोलते थे नहीं नहीं, ये वैष्णव लोग कभी भी प्रजल्प नहीं करते है? तो वो चाहता नहीं कि कुछ मैं व्याकरण को लेकर, न्याय को लेकर कुछ बताऊंगा, उसको सुनना नहीं चाहता, इसलिए भाग रहा है मेरे से। तो मुकुंद भी सुनता था क्या बातचीत चल रहा है। तो महाप्रभु जो दूर से चिल्लाते थे मुकुंद, हे मुकुंदा बुलाते थे वो। वो दिन आएगा जब शिवजी और ब्रह्मा जी मेरे पांव पकड़ेंगे और मेरे से भक्ति की याचना करेंगे, मैं इतना महान भक्त बनूंगा मैं एक दिन, ऐसे बोलते थे वो। तो बोलने वाले कौन है? कृष्ण ही है। तो ये कृष्ण है, राधा के महाभाव को लेकर धारण करके आए अपने हृदय में, आकर इस तरह की भक्ति की प्रदर्शन करते हैं। तो कुछ समय के लिए तर्क वितर्क करते थे, जैसे श्रीवास ठाकुर को बहुत आदर देते थे वो। एक दिन श्रीवास ठाकुर आ रहे थे सामने, तो चैतन्य महाप्रभु उनको देखा, हाथ जोड़कर उनको नमस्ते किया, प्रणाम किया। तो श्रीवास ठाकुर ने बोला उनको, हे पंडित, तुम इस तरह का न्याय शास्त्र पढ़कर वाद विवाद करते हो, इतना किताबों को पढ़कर तुमने इतना ज्ञान हासिल किया है, इसका क्या लाभ इसका? क्योंकि सब शास्त्र बताते हैं कि सब ज्ञान का अंतिम निष्कर्ष भगवत प्रेम है। अगर भगवत प्रेम किसी ने प्राप्त नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास कोरि वेतन मोरे देह प्रेम दान, ऐसे बोलते हैं ना, कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। अगर हम कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त किया अपने जीवन में, सब ज्ञान गड्ढे में जाएगा, कुछ काम का नहीं। ये बात तो शंकराचार्य ने भी बताया है अपने पहले श्लोक में, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति तु कृङ्करणे, भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढ़मते। देखिए, शंकराचार्य ने देखा एक बूढ़ा आदमी था, 80 उम्र से ऊपर, वो बैठ कर एक मोमबत्ती के लाइट में वो पाणिनी ग्रामर को पढ़ रहा था, वो पेज को निकाल कर पाणिनी के संस्कृत ग्रामर को। तो उनको देखकर शंकराचार्य ने ये गीत गाया, बोला कि तुम्हारे हड्डी दिख रहा है, शरीर इतना बुढ़ा हो गया है, हाथ में एक लाठी पकड़े हो, दांत सब गिर गया, ऐसा हो गया आपका, और आंख भी ठीक तरह से दिखता नहीं, अभी पाणिनी ग्रामर को लेकर बैठा है तुम, तुम क्या करने वाले हो? एक दिन मैं ट्रेन में बैठा था, सामने उस पार एक मायावती सन्यासी बैठा था, तो मुझे बुलाया था उसने, तो मैं गया उनके निकट। वो बोला कि अभी ट्रेन जाने बहुत बोर लग रहा है, तो तुमको मैं बताऊंगा प्रगति शब्द का 60 मतलब बताऊंगा तुमको, आपको तो बैठो मेरे पास। मैंने बोला नहीं, ये आपके विश्लेषण सुनने के समय नहीं है, क्योंकि हम भागवत पढ़ रहे हैं। ऐसे बोलकर मैं ऊपर बर्थ के ऊपर चढ़ गया मैं उसके बाद। लेकिन वो दूसरे को बता रहा था, वो प्रगति एक शब्द को लेकर अलग अलग उसको कॉम्बिनेशन करके अलग करके वो बता रहा, समझा रहा था। वो बोले मतलब क्या है? इस तरह शंकराचार्य ने बोला उनको, आप इतना शास्त्र पढ़ने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि अंत में आपको क्या निष्कर्ष पर आना पड़ेगा? वासुदेव सर्वमिति। इस तरह चैतन्य महाप्रभु को भी गदाधर पंडित ने श्रीवास ठाकुर ने बताया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बोले मालूम है आपको? वो हाथ जोड़कर बोले कि देखिए, कुछ समय के लिए मैं न्याय शास्त्र पढ़ूंगा, और उसके बाद मैं भक्तों के संग में आकर मैं भक्ति को गंभीरता से लूंगा। लेकिन मैं गंभीरता से भक्ति कैसे ले पाऊंगा? अगर आप जैसे वैष्णवों के आशीर्वाद मुझे नहीं प्राप्त होगा, तो भक्ति में आगे कैसे बढ़ूंगा? ऐसे बोला उन्होंने। तो इस तरह वैष्णवों की ओर उनका एक तरह का लीला करते थे, जैसे मुकुंद के साथ गदाधर पंडित के साथ, क्योंकि वैष्णवों को इस तरह का बर्ताव करके उनके अंदर कैसे वो कोमल हैं, कैसे वो उनके भक्त लोगों को कृष्ण के ऊपर एक पतिव्रता नारी के समान कृष्ण की भक्ति करते हैं, उसको देखकर इनको बहुत आनंद आता था चैत्र महाप्रभु को। और इस तरह वरिष्ठ वैष्णव जो थे, महान भक्त थे, उनको बहुत आदर भी देते थे। ऐसा बताया गया है कि वो दीक्षा के पहले निमाय पंडित गंगा के तट में जाते थे, उधर देखते थे कि अनेक वैष्णव लोग नहाते थे, तो नहाने वाले बूढ़े वैष्णव लोग जो होते थे, उनको अपने हाथ देकर उनके कंधों को उठाकर पानी से बाहर आने के लिए मदद करते थे ऐसे। और कुछ वैष्णव लोग कपड़े रख कर नहाने के लिए जाते थे, तो उन कपड़ों को निमाय पंडित खुद ही धोते थे, धोकर उसको सुखाते थे। तो वो वैष्णव लोग बाहर आने के बाद चिल्लाते थे, हे निमाय पंडित, क्यों धोया तुमने मेरा कपड़ा? तो वैष्णव लोग तो संकोच करते हैं दूसरों को सेवा देने के लिए, है ना। जो वैष्णव सुखाने के लिए डालते थे कपड़ा, उस कपड़े को फोल्डिंग करके उनको देते थे, आप ले लीजिए। अगर किसी को वैष्णव को गायत्री मंत्र करना हो, तो उनको बैठने के लिए कुशाग घास डालते थे उनको। तो किसी को आचमन पात्र चाहिए तो आचमन पात्र देते थे ऐसे। तो इस तरह सेवा करके करके उनको दंडवत प्रणाम करते थे निमाय पंडित। तो वैष्णव लोग खुश होकर उनके सर के ऊपर आशीर्वाद देकर बताते थे कि कृष्णे मते रस्तु, ऐसे बोलते थे, कृष्ण को ही बोल रहे हैं कृष्णे मते रस्तु। तो इस तरह आशीर्वाद देते थे। लेकिन निमाय पंडित ने सिखाया हमको कैसे हम महान वैष्णवों से हम आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसके बाद उनको दीक्षा होता है निमाय पंडित को ईश्वरपुरी से। तो इस तरह हम भगवान की लीलाओं को नवद्वीप में कैसे तर्क करने वाले निमाय पंडित ऐसा वैष्णव बना वृंदावन के नवद्वीपवासी लोग आश्चर्यचकित हो गए, दंग रह गए वो लोग हैं। क्योंकि वो लोग श्रीवास ठाकुर के घर के पीछे एक बगीचा था, उधर फूल निकालने के लिए आते थे सब वैष्णव लोग। तो फूल निकालते समय भगवान के नाम गाते थे वो लोग। लेकिन जब एक दूसरे को देखते थे कुछ न कुछ आदान प्रदान होता था उनको। लेकिन उस दिन ये आदान प्रदान हुआ कि निमाय पंडित वापस लौटा है गया जाकर, लेकिन सुना आपने क्या स्थिति है उसका, आंखों में से प्रेमाश्रु बह रहा है, हर क्षण वो कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, मेरे कृष्ण किधर है, मेरे कृष्ण किधर है, इस तरह। तो वैष्णव लोग एक दूसरे को बता रहे थे, इस तरह सब सारे वैष्णवों के बीच में यह संदेश फैल गया। उसके बाद वैष्णवों के बीच में आकर जब चैतन्य महाप्रभु आए, सब वैष्णव उनके उनके निकट आ गए, जुड़ गए उनके साथ। उनकी दिव्य प्रेमोन्माद की स्थिति को देखकर वैष्णव लोग रोने लगे प्रेमाश्रु से और जोरदार कीर्तन होने लगा। और निमाय पंडित ने बोला कि हम दिन में सिर्फ कीर्तन क्यों करते हैं, रात को भी हम कीर्तन करेंगे। इस तरह बोलकर सब वैष्णवों को लाकर वो कीर्तन करना करने लगे रात को भी शिवा संगन में। कृष्ण राम मुकुंद मुरारी वन माली, कृष्ण राम मुकुंद मुरारी वन, कृष्ण राम मुकुंद मुरारी वन माली, मुरारी वन माली, मुरारी वन माली, कृष्ण राम मुकुंद मुरारी वन माली। तो ये गीत गाते थे महाप्रभु, उनके ये नाम अक्सर गाते थे उधर संकीर्तन में शिवा सांगन में। और हम शिवा सांगन की लीला पढ़ सकते हैं, निमाय पंडित इस तरह भक्त बनने के बाद विविध लीलाएं करते हैं उधर। कैसे श्रीवास ठाकुर की ससुर, सास बोलती है ना, सास सास बैठी थी वो कीर्तन को देखने के लिए, लेकिन उनको अनुमति नहीं दिया गया उनको। इस तरह एक ब्रह्मचारी भी कीर्तन को देखना चाहते थे, एक दुग्धहारी ब्रह्मचारी है, उनकी उनकी लीला है। इस तरह अनेक लीलाएं हैं। तो महाप्रभु के हर लीला में कुछ ना कुछ सीख है। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु के साथ जब मिलन होता है, कैसे वो महाप्रभु गौर निताई दोनों हरनाम संकीर्तन को शुरू करते हैं। तो ये तो सब नवद्वीप की उनकी लीलाएं बता रहे हैं हम। इस तरह 18 साल उन्होंने बिताया किधर, जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में 6 साल प्रचार काम में गया महाप्रभु और 12 साल उधर ही रहे जगन्नाथपुरी में। उधर भी बहुत कुछ लीलाएं हुए, रथ यात्रा में क्या लीला हुआ महाप्रभु के, सिद्ध बकुल में क्या लीला किया उन्होंने, और इस तरह तोटा गोपीनाथ में जाकर गदाधर पंडित के साथ क्या लीला की उन्होंने, और इस तरह सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इनके साथ रघुनाथ दास गोस्वामी, इस तरह अनेक लीलाएं हैं महाप्रभु के। तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं खास करके गौड़ी वैष्णवों के लिए बहुत बड़ा देन है, क्योंकि वो हमको सिखा रहे हैं कि एक भक्त का आदर्श वो प्रदर्शन कर रहे हैं उसका। लेकिन व्हाट टाइम इज इट, हैव टू फिनिश 11:45, इज इट ऑलमोस्ट टाइम, आई थिंक ऑलरेडी टाइम हो गया, आई फिनिश इन 5 मिनट्स। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ जो आज चर्चा करने वाले थे लेकिन टाइम नहीं मिला। अभी आप लोग खुद पढ़िए, बहुत अच्छा सेक्शन है, ये आदि लीला छठा अध्याय के श्लोक नंबर बता रहा हूँ आपको, 42 से लेकर 82 तक, 42 to 82। तो इसका सारांश क्या है, मैं 2-3 मिनट में बोलकर हम प्रवचन को विराम देंगे। इधर बताया गया है कि एक अद्भुत बात, शायद हम में से अनेक लोग शायद जानते नहीं हो, लेकिन तो सुना नहीं हो शायद। ये जो श्लोक बोला मैंने, आदिलीला 6 chapter 42 to 82, इसमें क्या बताया गया है, भगवान के सब पार्षद जो होते हैं, जितना भी महान पार्षद हो वो भगवान से वरिष्ठ भी हो, जैसे बलराम, नहीं तो भगवान के माता पिता भी हो जो यशोदा और नंद बाबा, नहीं तो भगवान के अवतार भी हो जैसे अद्वैताचार्य प्रभु जो महाविष्णु के अवतार हैं, ऐसे हो, कोई भी हो, ये सब लोग भगवान के साथ विविध रसों में आदान प्रदान करते हैं, जैसे साक्य रस में और वात्सल्य रस में, माधुरी रस में, ऐसे अलग अलग रसों में, लेकिन उनके हृदय में इनका अपने बारे में क्या सोचना है, ये अपने आप को भगवान के एक दास मानते हैं, यही बात चर्चा किया है। चैतन्य रदास दासे रानुदास, ऐसे बताते हैं ये अद्वैताचार्य प्रभु, बोलते हैं कि मैं नाचूंगा गाऊंगा ये बोलते हुए कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ और चैतन्य महाप्रभु के दासों का दास हूँ, ऐसे बताते हैं। ये बोल रहे हैं कि ये ही एक ही बात मुझे बस चाहिए और बाकी कुछ नहीं चाहिए जीवन में, क्योंकि महाप्रभु ने मुझे अपने दास के रूप में स्वीकारा है। तो इसको बोलते हैं दास्य सुख, बोलते हैं उसको, दास्यता से प्राप्त होने वाले सुख के बारे में वर्णन है। तो कभी दूसरे क्लास में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आपको समय मिले तो आप लोग पढ़िए आदिलीला 6 chapter 42 to 82। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री गौर निताय की, श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की।